स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी की पहली सुबह नमस्कार भारत में। आज है 16 जुलाई दिन रविवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। बिहार में सत्ताधारी गठबंधन पर मंडराते संकट के बीच आज जेडीयू ने बुलाई विधायकों की बैठक। तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर लालू के तेवर ज्यों के त्यों।
अब विधानमंडल ने जो निर्णय ले लिया है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफे का सवाल ही नहीं है, जिनको संपत्ति देखना है समझना है 20 बार हम सफाई दे चुके हैं।
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षा बजट में की भारी कटौती।
उत्तर प्रदेश की आमदनी नहीं बढ़ रही है और उन 36,000 करोड़ रुपए देने के लिए इन्हें कहां कहां से कट कर सकते थे, उसी से इस पैसे को इन्होंने जुटाया है।
भारत प्रशासित कश्मीर का जायजा लेने आज भारतीय प्रेस परिषद का एक दल पहुंचेगा कश्मीर। होगी उर्दू अखबारों की समीक्षा और विंबलडन डायरी भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। तुर्की में नाकाम तख्तापलट की पहली बरसी पर कल इस्तांबुल में विशाल रैली आयोजित की गई। रैली में लाखों लोग इस्तांबुल ब्रिज पर इकट्ठा हुए। ये वही जगह है जहां बागी सैनिकों से लड़ते हुए 34 लोगों की मौत हो गई थी। रैली को राष्ट्रपति रचेप तैयप अर्दोआन ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने ये साबित किया है कि वे अपने देश की रक्षा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। इस मौके पर तुर्की के उप प्रधानमंत्री शीम शेख ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में इस बात से इनकार किया कि सरकार विरोधियों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा,
What we doing? We're actually saving Turkish democracy, Turkish rule of law.
हम जो कुछ कर रहे हैं वो लोकतंत्र, कानून का राज और तुर्की का भविष्य बचाने के लिए कर रहे हैं। जिन लोगों की वफादारी सत्ता के लालची आपराधिक नेटवर्क के साथ है, उनके लिए तुर्की सरकार में कोई जगह नहीं है। ये थे तुर्की के उप प्रधानमंत्री शीम शेख के शब्द। चीन की सरकारी संवाद एजेंसी सिन्हुआ ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर उसने सिक्किम के डोकलाम इलाके से अपने सैनिक नहीं हटाए तो उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। समाचार एजेंसी ने कहा है कि जब तक भारत पीछे नहीं हटता तब तक इस मुद्दे पर बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत डोकलाम में चीन के सड़क बनाने की कोशिश का विरोध कर रहा है। ये वही इलाका है जहां चीन, भारत और भूटान की सीमाएं मिलती हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन के मानवाधिकार कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता लू शियाओबाओ का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सरकार द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में शियाओबाओ के बड़े भाई लू शियाओगुआन ने कहा कि अंतिम संस्कार परिवार की इच्छा के अनुसार किया गया। उन्होंने कहा, मैं इस मौके पर लू शिया और पूरे परिवार की तरफ से सरकार को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। अंतिम संस्कार परिवार की इच्छा के अनुरूप किया गया। हमने अपना पक्ष उनके सामने रखा था और वो इससे संतुष्ट थे। ये थे लू शियाओगुआन के शब्द। इसराइल का कहना है कि यरूशलम के पवित्र धर्मस्थल को आज फिर से खोल दिया जाएगा। इस पवित्र स्थल को यहूदी टेंपल माउंट कहते हैं और मुसलमान हरम अल शरीफ। शुक्रवार को एक हमले में दो इसराइली पुलिसकर्मियों की मौत के बाद इस पवित्र स्थल को बंद कर दिया गया था। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। गणित का प्रतिष्ठित सम्मान फील्ड्स मेडल पाने वाली पहली महिला मरियम मिर्जाखानी का अमेरिका में निधन हो गया है। वे 40 साल की थीं और स्तन कैंसर से जूझ रही थीं। प्रोफेसर मिर्जाखानी का ताल्लुक ईरान से था और उन्हें 2014 में कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री में शोध के लिए फील्ड्स मेडल से नवाजा गया था। सेनेगल से आ रही खबरों के मुताबिक राजधानी डकार में एक फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ मचने से 8 लोगों की मौत हो गई है। सेनेगल की सरकारी समाचार एजेंसी एपीएस का कहना है कि स्थानीय टीमों के समर्थकों के बीच झड़पों के बाद स्टेडियम में भगदड़ मची। ब्रिटेन में एसिड हमलों के मामले में सजा बढ़ाने पर विचार चल रहा है। ब्रिटानी गृहमंत्री अंबर रड ने कहा है कि पिछले 6 महीने में इंग्लैंड और वेल्स में एसिड हमले की 400 से अधिक घटनाएं हुई हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। बिहार में सत्ताधारी गठबंधन में तनाव की खबरों के बीच आज जनता दल यूनाइटेड ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भी आज बैठक करने वाली है। वहीं कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक सरकारी कार्यक्रम में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हिस्सा नहीं लिया। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि संपत्ति को लेकर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं और तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन को कोई खतरा नहीं है। पूरे मामले पर पटना से नीरज सहाय की रिपोर्ट।
बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन की गांठ सुलझती नजर नहीं आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड अपने अपने स्टैंड पर कायम है। ऐसी विषम राजनीतिक परिस्थितियों के बीच आज सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपनी अपनी बैठकें करने वाले हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि बैठक के बहाने सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड अपने सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर दबाव बरकरार रखना चाहती है। शनिवार को एक सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद से अपनी दूरी का उस समय संकेत दे दिया जब उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के एक मंत्री से दूरी बनाने के लिए वहां से अपनी कुर्सी हटवा ली। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को भी आना था, लेकिन वो अनुपस्थित रहे। इस तनातनी के बीच शनिवार को जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने लालू प्रसाद पर कुछ आरोप लगाए।
लालू यादव जी बुजुर्ग हो चुके हैं, आप बुजुर्गियत में किस मानसिकता से, किस सोच से, बुजुर्गियत के कारण या और कारणों से वो इस तरह का सलाह दे रहे हैं या इस तरह के वाक्या कर रहे हैं, ये उनके से ज्यादा दूसरा नहीं बता सकता।
हालांकि श्याम रजक के बयान से उनकी पार्टी ने यह कहकर किनारा कर लिया है कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है। उधर राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने पहले ही कह दिया है कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे और महागठबंधन अटूट है। उनके अनुसार
विधानमंडल ने जो निर्णय ले लिया है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफे का सवाल ही नहीं है, जिनको संपत्ति देखना है समझना है 20 बार हम सफाई दे चुके हैं और सब पब्लिक डोमेन में है, जाकर देखो।
भाजपा ने भी जेडीयू को अपने स्टैंड पर कायम रहने की सलाह दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव कहते हैं कि
पूरे मामले में तुरंत एक्शन लेना चाहिए, जो निर्णय उनको करना है करें, लेकिन तुरंत करें, ये केवल उसको टालने की कोशिश कर रहे हैं या कहीं से।
भाजपा जेडीयू की बैठक का मुद्दा तो राष्ट्रपति चुनाव बताया जा रहा है, लेकिन इस बहाने दोनों दलों के नेता राज्य के वर्तमान परिस्थिति पर भी मंथन करेंगे। नीरज सहाय, बीबीसी पटना।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए जो बजट पेश किया है उसमें शिक्षा बजट में भारी कटौती की गई है। हालांकि सरकार का कहना है कि उसने कटौती नहीं की है बल्कि फिजूल खर्ची रोकने की कोशिश की है, लेकिन जानकारों का कहना है कि यह शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने की साजिश है। सुनिए समीरात मिश्र की रिपोर्ट।
बजट का जो आकार है वह 384,660 करोड़ रुपए है, जो गत वर्ष के बजट की तुलना में लगभग 11% अधिक है।
मंगलवार को बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने बजट के बारे में कुछ इस तरह से जानकारी दी। उन्होंने पिछले साल की तुलना में 11% ज्यादा का बजट जरूर पेश किया, लेकिन राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक यानी शिक्षा के मद में जमकर कटौती की। योगी सरकार ने 2017-18 के बजट में माध्यमिक शिक्षा के लिए 576 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा के लिए 272 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जबकि प्राथमिक शिक्षा के लिए करीब 22,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2016-17 के बजट को देखा जाए तो उसमें माध्यमिक शिक्षा के लिए 9,500 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा के लिए 2,742 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे, यानी दोनों ही क्षेत्रों के लिए बजट में 90% तक की कमी कर दी गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा शिक्षा मंत्री भी हैं और उनके पास उच्च माध्यमिक और प्राथमिक तीनों ही विभाग हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा ये नहीं मानते कि बजट में कटौती की गई है।
नहीं, कटौती नहीं, अपव्यय को रोकने की प्रक्रिया प्रारंभ है और उत्तर प्रदेश में शिक्षा की नीति रीति में व्यापक परिवर्तन हो रहा है। पहले क्या था कि हम बिल्डिंग तो बनवाते जा रहे हैं, टीचर रख नहीं रहे, कहाँ की ये तुक है। पैसे का जो आप देख रहे ना अपव्यय, जिसको मैं बोलता हूँ, पैसे का व्यय टीचर की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता को करने में होना चाहिए, जो इस बार किया है हमने। गलत तथ्य हैं, जो भी आपके पास डेटा है वो सही नहीं है।
सर, बजट का डेटा है मेरे पास,
जो मैंने अपना वक्तव्य दे दिया कि आपका जो वक्तव्य है वो पहचान से अलग है।
लेकिन जानकारों का कहना है कि शिक्षा के लिए जितने रुपए इस बजट में निर्धारित किए गए हैं उतने तो शायद अध्यापकों के वेतन भर को भी पूरे नहीं होंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति और शिक्षाविद प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा कहती हैं,
बजट आया है, इसका कोई वजह और फिर आगे क्या होगा उसके रास्ते ही नहीं कुछ सूझ रहा है।
जानकारों का कहना है कि इतनी कम धनराशि में तो इन विभागों का सामान्य खर्च चल जाए वही बहुत बड़ी बात है। शोध और सेमिनार की बात तो दूर की कौड़ी है। लेकिन डॉक्टर दिनेश शर्मा कहते हैं,
शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई के लिए एक भी पैसा कम नहीं हुआ है, हमारा मॉडर्नाइजेशन सिस्टम के लिए एक भी पैसा कम नहीं हुआ है, शोध के लिए एक पैसा कम नहीं हुआ है। हाँ, जो अपव्यय हो रहे थे है कि शिक्षा के नाम पे तमाम प्रकार के बिजनेस हो रहे थे, उनको हमने कम किया है।
ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी बड़ी कटौती कैसे की गई है, वो भी तब जबकि माध्यमिक और उच्च शिक्षा में कर्मचारियों की ही एक बड़ी संख्या है। क्या सरकार सच में शिक्षा पर व्यय को फिजूल खर्ची मानती है? वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं,
देखिए शिक्षा जो है भाजपा का अपना मूल एजेंडा है, पर उसकी दिक्कत यह क्या थी कि उसे 36,000 करोड़ रुपए किसानों को देने थे, उत्तर प्रदेश की आमदनी नहीं बढ़ रही है और उन 36,000 करोड़ रुपए देने के लिए इन्हें कहां कहां से कट कर सकते थे, उसी से इस पैसे को इन्होंने जुटाया है।
बहरहाल सरकार आश्वस्त है कि बजट में जितनी धनराशि का निर्धारण किया गया है वो शिक्षा विभाग के लिए पर्याप्त है और वो फिजूल खर्ची रोककर सब ठीक कर लेगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अब तक इतनी बड़ी धनराशि सिर्फ अपव्यय के लिए निर्धारित की जाती थी या फिर नई सरकार शिक्षा पर खर्च को अपव्यय समझती है? समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
खबर सच है अगर BBC पर है।
तुर्की में नाकाम तख्ता पलट के एक साल पूरा होने के मौके पर इस्तांबुल में विशाल रैली निकाली गई। इस मौके पर लाखों की संख्या में लोग इस्तांबुल ब्रिज पर जमा हुए और स्वतंत्रता और राष्ट्र की रक्षा के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। इस मौके पर राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने अपने संबोधन में नागरिकों को देश का रक्षक बताया। BBC संवाददाताओं के ब्यौरे का सार सुना रहे हैं दिनेश उप्रेती।
तुर्की का इस्तांबुल ब्रिज कल एक और ऐतिहासिक घटना का गवाह बना। हाथों में तुर्की का राष्ट्रीय झंडा लहराते हुए लाखों की संख्या में लोग यहां इकट्ठा हुए और उन लोगों के जज्बे को सलाम किया जिन्होंने पिछले साल इसी जगह पर सैनिकों के एक धड़े की तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम कर दिया था। रैली में शामिल लोगों का कहना था कि वे अपने देश के प्रति समर्थन जताने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। रैली को राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने भी संबोधित किया। उन्होंने अपने भावुक संबोधन में कहा, मैं अपने देश के उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अपने देश की रक्षा की, जो घायल हुए लेकिन जो पीछे नहीं हटे। 15 जुलाई की रात को 250 नायकों ने खुद को कुर्बान किया, लेकिन आपको पता है बदले में हमें क्या मिला? हमने अपने देश का भविष्य बचाया। ये थे राष्ट्रपति एर्दोगान के शब्द। एर्दोगान ने तख्तापलट की साजिश रचने वालों को मौत की सजा देने के फैसले को सही ठहराया और कहा कि उन्हें ग्वांतानामो बे जेल के कैदियों की तरह ड्रेस पहना देनी चाहिए। रैली में पहुंचे लोगों ने कहा कि वे यहां राष्ट्र की रक्षा के प्रति समर्थन जताने के लिए आए हैं। उनका कहना था कि उनके लिए ये गौरव के पल हैं। उन्हें मारे गए लोगों का दुख तो है लेकिन इस बात का फख्र भी है कि उनकी जीत हुई। जुल्फिकार कहरमान ने कहा, मुझे नहीं पता मैं उस दिन क्यों नहीं मरा। एक साल हो गया है और ये सवाल लगातार मेरा पीछा कर रहा है। मैंने उस दिन खुद को टैंक के आगे क्यों नहीं फेंक दिया? मैं बिना किसी डर के खुद को देश के लिए कुर्बान कर दूंगा। ये थे जुल्फिकार कहरमान के शब्द। राष्ट्रपति एर्दोगान ने इस्तांबुल ब्रिज पर शहीद मेमोरियल का भी उद्घाटन किया। इस पुल का नाम बदलकर मार्टियर्स ऑफ जुलाई 15 कर दिया गया है। सेना के एक धड़े ने पिछले साल 15 जुलाई को सरकार के तख्तापलट की कोशिश की थी। तख्तापलट की इस नाकाम कोशिश की लड़ाई में 250 से अधिक लोग मारे गए थे और 2,196 लोग घायल हुए थे।
तुर्की में नाकाम तख्तापलट की कोशिश के एक साल। ब्यौरा सुना रहे थे दिनेश उप्रेती।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
भारतीय प्रेस परिषद का एक दल आज भारत प्रशासित कश्मीर पहुंच रहा है। यह दल कश्मीर घाटी का दौरा करेगा और राज्यपाल, मुख्यमंत्री और दूसरे नेताओं से मुलाकात करेगा। इस बीच कल दिल्ली में राज्य के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर मामले में चीन के दखल को लेकर जो बयान दिया उस पर कश्मीर घाटी में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का एक दल आज दोपहर श्रीनगर पहुंच रहा है, जहां वो अपने 4 दिन के दौरे के दौरान कश्मीर के पत्रकारों से मिलने के अलावा राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और राज्यपाल एनएन वोहरा से भी मुलाकात करेगा और साथ ही प्रशासन और गृह विभाग के कुछ आला अधिकारियों से भी मिलेगा। ये दल कश्मीर में पत्रकारों को दरपेश समस्याओं की भी विश्लेषण करेगा। कौंसिल के कोऑर्डिनेटर नवीन जोशी ने इस हवाले से बीबीसी को बताया।
ये कश्मीर मीडिया के रिलेटेड जो इश्यूज हैं, कुछ कश्मीर मीडिया के किस सिनेरियो को देखते हैं उसको एनालाइज करने के लिए आ रहे हैं, और इसके जो कन्वीनर हैं श्री एस एन सिन्हा जी, ही सीनियर जर्नलिस्ट एंड मेंबर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, अलोंग विद हिम टू ऑफ आवर ऑनरेबल मेंबर्स आर आल्सो देयर, मिस्टर सी के नायक एंड डॉक्टर सुमन गुप्ता जी।
बीच शनिवार को राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के उस बयान को, जो उन्होंने भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दिल्ली में मुलाकात के बाद दिया, जिस बयान में उन्होंने चीन पर इल्जाम लगाया कि चीन जम्मू कश्मीर के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, पर राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जहां एक तरफ ये बयान महबूबा मुफ्ती से भारत सरकार ने दिलवाया है और वहीं भारत सरकार महबूबा मुफ्ती के जरिए दिलवाए गए बयान से जम्मू कश्मीर पर अपनी गिरफ्त को जवाब बख्शना चाहती है। कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हिलाल मीर कहते हैं,
महबूबा मुफ्ती से बयान कहलवाया गया है क्योंकि उसने बयान आपने तो देखा ही होगा राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद दिया, तो इसमें उसका अपना कुछ नहीं है।
चीन ने 2 दिन पहले इस बात की पेशकश की थी कि वो कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते तनाव के चलते अपनी भूमिका निभाने को तैयार है, जिस पेशकश को भारत ने ठुकरा दिया है। महबूबा मुफ्ती का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत और चीन के बीच तनातनी बढ़ी हुई है। उधर अलगाववादी नेता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गिलानी गुट के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल के उस बयान की सराहना की है, जिसमें उन्होंने कश्मीर समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने पर जोर दिया है। शनिवार को दक्षिणी कश्मीर के त्राल इलाके में एक मुठभेड़ के दौरान जैश मोहम्मद के 3 चरमपंथियों को मारने का दावा किया गया है। भारतीय सेना ने शनिवार को बताया कि नियंत्रण रेखा के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में उनका एक जवान मारा गया है। इस बीच शनिवार को कुलगाम के लारो इलाके में CRPF की एक गश्ती पार्टी पर हथगोला फेंका गया, जिसमें एक CRPF का जवान घायल हुआ है। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
पाकिस्तान के उर्दू अखबारों ने इस हफ्ते किन खबरों को प्रमुखता दी है, उनके बारे में जानते हैं उर्दू अखबारों की समीक्षा में, जिसे तैयार किया है BBC संवाददाता इकबाल अहमद ने और आप तक पहुंचा रहे हैं दिनेश उप्रेती।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की बात करें तो पनामा लीक्स मामले में संयुक्त जांच कमेटी यानी GIT की रिपोर्ट से जुड़ी खबरें पूरे हफ्ते हर तरफ छाई रहीं। GIT ने इस हफ्ते अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार कमेटी ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार की दौलत और उनकी आय के स्रोत में काफ़ी फर्क पाया है। इसी बुनियाद पर विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि कमेटी ने पूरे शरीफ परिवार को भ्रष्टाचार के कई मामलों में शामिल पाया है। GIT की रिपोर्ट सौंपने के बाद से ही पाकिस्तानी सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टियां नवाज शरीफ से इस्तीफे की मांग कर रही हैं तो नवाज शरीफ की पार्टी कह रही है कि इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते इसके अलावा शायद ही कोई दूसरी बड़ी खबर कहीं दिखी हो। नवाज शरीफ के बयान के हवाले से अखबार जंग ने सुर्खी लगाई, आखिर तक लड़ूंगा। जंग लिखता है कि नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को पीछे धकेला जा रहा है, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देंगे। शरीफ का कहना था, अवाम के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगा। दिल करता है सब कुछ कह दूं, ऐसा वक्त जरूर आएगा। मैंडेट पर ये तीसरा हमला है। अखबार एक्सप्रेस ने लिखा है कि मुस्लिम लीग पार्टी ने एकमत से कहा है कि GIT की रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है। पार्टी ने नवाज शरीफ से अपील की है कि वो डटे रहें। नवाए वक्त के मुताबिक नवाज शरीफ ने काफ़ी कड़े लहजे का इस्तेमाल करते हुए विपक्षी पार्टियों को लोकतंत्र को बेचने वाला करार दिया है। अखबार के अनुसार नवाज शरीफ का कहना था, लोकतंत्र को बेचने का षड्यंत्र रचने वालों के कहने पर किसी सूरत में इस्तीफा नहीं दूंगा। अखबार नवाए वक्त ने विपक्षी पार्टियों की बैठक को पहली खबर बनाया है। अखबार लिखता है कि विपक्ष की 7 पार्टियों ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से इस्तीफे की मांग की है। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी समेत 7 पार्टियों का कहना है कि संसद को भंग नहीं किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नवाए वक्त ने इमरान खान के एक बयान पर भी सुर्खी लगाई है। अखबार लिखता है, नया पाकिस्तान बनते देख रहा हूँ, पार्टी कार्यकर्ता इस्लामाबाद आने के लिए तैयार रहें। वहीं एक्सप्रेस ने मरियम नवाज के एक बयान के हवाले से लिखा है, जेआईटी का काम जारी रखना अदालत की तौहीन है। अखबार जंग ने एक संपादकीय लिखा है जिसका शीर्षक है, सत्ता से अलग होने का वक्त। जंग ने दूसरे संपादकीय में ब्रितानी अखबार द इकोनॉमिस्ट के एक लेख का हवाला दिया है। अखबार लिखता है कि इस रिपोर्ट ने पाकिस्तानी राजनीति में हलचल मचाई हुई है। अखबार आगे लिखता है, अच्छा हुआ कि जमा हुआ पानी बहने लगा है और अब ये पाक साफ भी हो जाएगा। इमरान खान ने इस मामले में भारत को भी घसीट लिया है। एक्सप्रेस के अनुसार इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ के जाने के डर से भारत परेशान है। अखबार लिखता है, भारत में कोहराम मचा है कि कहीं उनका दोस्त नवाज शरीफ चला न जाए और पाक फौज मजबूत न हो जाए। इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ के जाने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और सेना मजबूत होगी, जो कि भारत नहीं चाहता है।
उर्दू अखबारों की इकबाल अहमद की समीक्षा सुना रहे थे दिनेश उप्रेती। फिल्म निर्देशक मधुर भंडाकर की आने वाली फिल्म इंदु सरकार आजकल चर्चा में है। इस फिल्म का ट्रेलर आने के बाद उन्हें लीगल नोटिस मिल रही थी और अब फिल्म पर सेंसर बोर्ड की गाज भी गिरी है। इस फिल्म में कीर्ति कुल्हाड़ी, नील नितिन मुकेश, अनुपम खेर अहम भूमिका में हैं। इस हफ्ते के न्यूज़मेकर मधुर भंडाकर हैं और उनसे बात की है हमारी सहयोगी सुमिरन प्रीत कौर ने।
ये है शो बीबीसी न्यूज मेकर्स, मैं आपके साथ हूँ सुमिरन और इस बार खास मुलाकात मधुर भंडारकर से, जो ला रहे हैं अपनी फिल्म इंदु सरकार। फिल्म इंदु सरकार के रिलीज होने में बेशक अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन जैसे जैसे रिलीज डेट पास आ रही है वैसे वैसे कंट्रोवर्सीज बढ़ती जा रही हैं। जहां सेंसर बोर्ड ने बहुत सारे कट्स रेकमेंड किए, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इस फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किए। डायरेक्टली मधुर भंडारकर से जानते हैं कि ये फिल्म है किस बारे में।
कहीं इसके पहलू है, कहीं इसकी ये जो आज की युवा पीढ़ी है, आज की यंग जनरेशन है, उनको ये फिल्म से बहुत ही एक ओवरऑल समरी मिलेगी कि इमरजेंसी क्या था। इंदु की कहानी है, कीर्ति की कहानी है, कि उसकी जर्नी की कहानी है, कि उसके उसके पति के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट है, आइडियोलॉजिकल वॉर है दोनों के बीच।
बहुत लोगों ने चेंजेस सजेस्ट किए तो कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और इस बात से मधुर भंडारकर गुस्सा है थोड़े। वो कहते हैं, यार सिर्फ ट्रेलर देख के इतना गुस्सा क्यों?
स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है कि पहली बात, एक 3 मिनट के ट्रेलर को देख के लोगों ने रिएक्ट किया है, आप आंदोलन शुरू करो, पुतले जलाओ और इस तरह की चीज़ें करो, वो बहुत ही गलत है। फिल्म एक जो एक माध्यम है, एक जिस तरह से कोई आर्टिकल लिखता है, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाता है, उसी तरह कोई फिल्म बनाता है। और फिल्म जो होती है वो सेंसर में जाती है, सेंसर उसको देखती है, इसके बाद निर्णय लेती है कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इस तरह का आंदोलन, इस तरह की जो फ्रीडम एक्सप्रेशन की जो बात करते हैं, उस तरह का विवाद करते हैं पब्लिसिटी के लिए, ये बहुत गलत है।
पेज 3 फैशन और कॉरपोरेट जैसी फिल्में बनाने वाले मधुर भंडारकर की जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव भी आया था जब लोग इन्हें ध्यान ही नहीं देते थे।
तो इतना बुरा टाइम देखा, पार्टियों में मैं किसी और के थ्रू जाता था तो मैं देखता था कहीं एक्टर्स जो है, जैसे मैं आता था वहां पे तो लोग अपनी मुंडी घुमा लेते थे, क्योंकि मेरे ख्याल से फेलियर जो होता है, जिसको बहुत कम लोग उसको उस नजर से देखते हैं कि अरे यार इसकी पिक्चर फ्लॉप हो गई या अभी इसका क्या होगा, इसने बहुत बुरी खराब पिक्चर बनाई, तो ये कहीं चीजें ऐसी होती है। उसके बाद वहां से उठना, मैंने हमेशा कहा कि मुझे तो इंडस्ट्री वालों ने एकदम कब्र में बंद कर दिया था, और वो चांदनी बार थी जो पिक्चर से मैं कब्र से बाहर निकला और उसके बाद टच उड़ा, 10 साल हो गया और मैं अच्छी अपने हिसाब की फिल्में बनाता और अपना एक खुद का ब्रांड, एक मकाम हासिल किया मैंने।
तो मधुर भंडारकर बता रहे थे अपनी जर्नी के बारे में, अपने सफर के बारे में, कि किस तरह से एक वक्त था जब लोग इन्हें इग्नोर करते थे, तो चांदनी बार फिल्म के बाद एक ऐसा ट्विस्ट आया कि इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया।
न्यूज मेकर्स पेश कर रही थी सुमिरन प्रीत कौर। और अब थोड़ी चर्चा खेलों की कर लेते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 186 रन से हराकर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कप्तान मिताली राज ने अपने करियर का 6ठा शतक लगाया। एक रिपोर्ट के साथ आदेश कुमार गुप्त।
इंग्लैंड में खेले जा रहे महिला विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 186 रन से हराकर शान से सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर भारतीय महिला टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 265 रन बनाए। भारत की कप्तान मिताली राज का बल्ला गर्जा और उन्होंने 123 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से 109 रनों की शतकीय पारी खेली। यह मिताली राज के एक दिवसीय करियर का 6वां शतक रहा। मिताली राज के अलावा हरमनप्रीत कौर ने 60 और वेदा कृष्णा मूर्ति ने भी 70 रनों की जोरदार पारी खेली। मिताली राज और वेदा कृष्णा मूर्ति ने 5वें विकेट के लिए 108 रनों की शतकीय साझेदारी की। न्यूजीलैंड की लीग कैस्पेरिक ने 45 रन देकर 3 और हन्ना रोव ने 30 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। जीत के लिए 266 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की महिला टीम 25.3 ओवर में ही केवल 79 रन पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड की पारी को तहस नहस करने में खब्बू स्पिनर राजेश्वरी गायकवाड़ की भूमिका अहम रही, जिन्होंने 7.3 ओवर में केवल 15 रन देकर 5 विकेट झटके। उनके अलावा दीप्ति शर्मा ने भी 26 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। न्यूजीलैंड की एमी सैटरथवेट ने सबसे अधिक 26 रन बनाए।
समाचार सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। और अब चर्चा विंबलडन की। विंबलडन महिला सिंगल्स में स्पेन की गार्बिन ने तोड़ा वीनस विलियम्स का विजेता बनने का सपना और आज पुरुष एकल फाइनल में भिड़ेंगे रॉजर फेडरर और मारिन चिलिच। सुनिए विंबलडन डायरी।
बीबीसी हिंदी की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है, मैं हूं पवन सिंह अतुल। स्पेन की गार्बिन मुगुरुता ने 5 बार की चैंपियन वीनस विलियम्स को महिला सिंगल्स के फाइनल में हराकर इस साल का खिताब अपने नाम किया है। सेंटर कोर्ट पर खेला गया फाइनल मुकाबला मुगुरुता ने 7-5, 6-0 से जीता। जीत दर्ज कर मुगुरुता ने 37 वर्षीय वीनस विलियम्स को 9 साल बाद किसी बड़े टेनिस खिताब से महरूम रखा। अगर वीनस जीतती तो वो ओपन एरा की सबसे उम्रदराज चैंपियन होती। वैसे जाने अनजाने ही सही, मुगुरुता ने जीत के बाद वीनस की उम्र की ओर इशारा जरूर किया।
I had, I think, the hardest match today, you know, against Venus. She's such an incredible player. I grew up watching her play. So
Venus के खिलाफ आज का मैच सबसे मुश्किल था। वो एक अद्भुत खिलाड़ी हैं। मैं उनका खेल देखते हुए बड़ी हुई हूँ और अब उनके साथ फाइनल खेलना गजब का अनुभव है। इस साल की विंबलडन चैंपियन गार्बिन मुगुरुता के शब्द। वैसे मैच के बाद वीनस विलियम्स ने भी माना कि मुगुरुता काफी बेहतर खेली।
She played really well. I mean, she played top tennis, so I have to give her credit.
वो बहुत अच्छा टेनिस खेल रही थी। मुझे इसके लिए उन्हें पूरा श्रेय देना होगा। ये 2 हफ्ते मेरे लिए बहुत बढ़िया रहे हैं। अब बचे हुए टेनिस सीजन का इंतजार है। वीनस विलियम्स के शब्द। उधर लुकास कोबोट और मार्सिलो मेलो ने ओलिवर मराच और पेट पेविच की जोड़ी को 5-7, 7-5, 7-6, 3-6 और 13-11 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। इससे बिल्कुल उलट महिला डबल्स के खिताब का फैसला बहुत कम समय में हो गया। ताइवान की हावो चिंगचान और रोमानिया की मोनिका निसुलेचको की जोड़ी को रूस की एकाटेरिना माकारोवा और एलिना वेस्निना की जोड़ी से हार का मुंह देखना पड़ा। रूसी जोड़ी ने ये मैच 6-0, 6-0 से बेहद आसानी से जीत लिया। आज विंबलडन में रोजर फेडरर और मैरिन चिलिच पुरुषों के एकल मुकाबले के फाइनल में आमने सामने होंगे। पवन सिंह अतुल, बीबीसी विंबलडन।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। तुर्की में नाकाम तख्तापलट की पहली बरसी पर कल इस्तांबुल में विशाल रैली आयोजित की गई। इस मौके पर राष्ट्रपति रचेप तैयब अरदोगान ने कहा कि लोगों ने यह साबित किया है कि वे अपने देश की रक्षा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। चीन की सरकारी संवाद एजेंसी शिन्हुआ ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर उसने सिक्किम के डोकलाम इलाके से अपने सैनिक नहीं हटाए तो उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। एजेंसी ने कहा है कि जब तक भारत पीछे नहीं हटता तब तक इस मुद्दे पर बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। चीन के मानवाधिकार कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता लू शाओबाओ का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इसराइल का कहना है कि यरूशलम के पवित्र धर्मस्थल टेंपल माउंट को आज फिर से खोल दिया जाएगा। कुछ दिनों पहले 2 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद इसको बंद कर दिया गया था। गणित का प्रतिष्ठित सम्मान फील्ड्स मेडल पाने वाली पहली महिला मरियम मिर्जा खानी का अमरीका में निधन हो गया है। सेनेगल में एक फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ मचने से 8 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया देवाशीष कुमार ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की तमाम खबरें और उनका विश्लेषण जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। नमस्कार।